नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद जया, और श्रोताओं को नमस्कार।
तो हर दिन की तरह हम ढेर सारी खेल खबरें लेकर आते हैं, तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आइए सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में 7वें दिन भी भारत का दबदबा कायम, वंशिका और चिराग की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। ओवर कप बैडमिंटन में आज भारतीय टीम का मुकाबला यूक्रेन से। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में। तो शुरुआत करते हैं जूनियर निशानेबाजी विश्व कप से, जो कि मिस्र के काहिरा में खेला जा रहा है, और 7वें दिन भी भारतीय निशानेबाजों ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मोहिनी सिंह और हिमांशु राणा ने कांस्य पदक जीता। भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। तो निशानेबाजी में ऑलरेडी भारतीय टीम हमेशा से आप देखें तो अच्छा करते आ रही है, लेकिन अब जो जूनियर टीम है, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, इस तरह से अपना प्रदर्शन दिखला रहे हैं, तो किस तरह से हमारी और उम्मीदों को ये मजबूत कर रहे हैं?
देखिए, 25 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत ने सबसे बड़ा दल भेजा था 71 निशानेबाजों का। और भारत हमेशा से, चाहे जूनियर हो या फिर सीनियर लेवल की जो प्रतिस्पर्धा निशानेबाजी में होती है, भारत का दल बड़ा होता ही है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा स्किलफुल खिलाड़ी हैं अगर देखा जाए तो निशानेबाजी में। और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि सीनियर लेवल पर जाने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बेहतरीन मौका होता है
जी।
तो जो खिलाड़ी चर्चा में है और जिस तरह से प्रदर्शन किया, भारत पहले स्थान पर है, 25 देशों में पहला स्थान भारतीय निशानेबाजों ने बनाया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि दिव्यांशु और शांभी ने मिक्स टीम में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी इसमें बना है, और इसके अलावा जो स्वर्ण पदक जिसके बारे में आपने बताया, कांस्य पदक, इन्हीं के हर कलर का पदक भारतीय निशानेबाजों ने जीता है
जी।
और यही विशेषता है भारतीय निशानेबाजी की। अगर सीनियर लेवल पर आप बात करें जया, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक हो, इसमें निशानेबाजी स्पर्धा में हमारे पास मेडल आता ही आता है। तो एक नई पौध है जो आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें से कई खिलाड़ी वरिष्ठ टीम में आपको नजर आएंगे, जो भारतीय टीम का न केवल प्रतिनिधित्व करेंगे बल्कि पदक जीतने के मामले में वो पूरी तरह से नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे
जी। बिल्कुल, और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जूनियर खिलाड़ी भी उसी तरह का दमखम अपना दिखला रहे जिस तरह सीनियर खिलाड़ियों ने किया है, और आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। अब बात करते हैं बैडमिंटन के, जहां ओवर कप में भारतीय टीम का मुकाबला आज यूक्रेन से होगा। सिंगल्स में उन्नति होडा यूक्रेन की पोलिना बोहरोवा के साथ खेलेंगी। तन्वी शर्मा, देविका सिहाग भी आज सिंगल्स के मुकाबले खेलेंगी, जबकि डबल्स में पीवी सिंधु और तनीषा क्रास्टो तथा कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी यूक्रेन का सामना करेंगी। तो कल के मुकाबले में अगर हम देखें तो ग्रुप ए में शुरुआती मुकाबले में कल भारत की महिला टीम को मेजबान डेनमार्क से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या आज जो हमारी भारत की महिला टीम है वो कुछ कर पाएंगी?
नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपेक्षाकृत अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो महिला टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है अगर देखा जाए तो, और मुझे काफ़ी उम्मीद है। और सबसे इसमें दिलचस्प बात यह होगी कि पीवी सिंधु बहुत कम डबल्स खेलती हुई नजर आती हैं, तो वो एक जो अपनी जोड़ीदार हैं उनके साथ एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। और थॉमस और उबर एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसका भारत पूर्व विजेता रहा है, तो काफी उम्मीद हम भारतीय खिलाड़ियों से अभी कर सकते हैं।
बिल्कुल, और कल के मैच का हमने जिक्र किया तो बता दें कि पुरुष टीम ने थॉमस कप में अपने पहले ग्रुप ए के मुकाबले में कनाडा पे कल 4-1 से शानदार जीत हासिल की थी, और थॉमस कप में भारत का अगला मुकाबला सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ जबकि बुधवार को चीन के साथ होगा। अब बात क्रिकेट की, आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में एक विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। तो आज के मैच पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, आप चर्चा पहले वाले मैच की भी जरूर करेंगे जिसमें कुल मिलाकर 529 रन बने। ये पूरा आईपीएल जो है एक कब्रगाह जिसे मैं कहूँ साबित हुआ है गेंदबाजों के लिए। गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज का क्या हश्र हो रहा है आप देख रहे हैं। आज भी वही हुआ, लगातार डोमिनेट कर रहे हैं गेंदबाज। और वैभव सूर्यवंशी ने अगर अभी जो मैच चल रहा है उसकी बात करें, फिर से अपना सिक्का जमाया है। और जाहिर सी बात है, एक तरफ अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी है। इन्हीं लोग के बीच मुकाबला है। युवा पीढ़ी जिस तरह से आगे बढ़ रही है इस T20 फॉर्मेट में, एक मरतबा फिर से ये साबित किया है वैभव सूर्यवंशी ने कि कोई भी खिलाड़ी हूं। हमने देखा था कि बहुत ओवर्स पिछले मुकाबलों में फेंके गए थे, साकिब हुसैन के गेंद पर छक्का नहीं लगा था और बड़ी तारीफ की जा रही थी कि ये बहुत बड़ी बात है इस फॉर्मेट में अगर आप इतने ओवर्स की गेंदबाजी में अगर सिक्स आप कंसीड नहीं करते हैं तो। लेकिन आज वो भी दिखा दिया कि किस तरह से छक्के मारे जाते हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया और जो 4 छक्के उन्होंने लगाए थे पहले ओवर में वो तो देखने लायक था। मुझे तो लग रहा था कि कहीं ये 6 ना हो जाए। तो बहरहाल शानदार परफॉर्मेंस है। और आज का पूरा दिन ही, अगर चाहे आप दिल्ली से निकलकर जयपुर जाएं, उत्तर भारत का ये दोनों क्षेत्र है और दोनों जगह रन बरस रहे हैं।
आपने दिल्ली की बात की तो अभी हम बात करेंगे इस पर। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जिस तरह पंजाब ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया, सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
केएल राहुल की आक्रामक नाबाद शतकीय पारी और नीतीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 गेंदों में 220 रन की साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 264 रन बनाए। यह मौजूदा सत्र का सर्वोच्च स्कोर होने के साथ आईपीएल इतिहास में कैपिटल्स का सबसे बड़ा स्कोर है। केएल राहुल ने 67 गेंदों पर नाबाद 152 रन बनाए जिसमें 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे। वहीं नीतीश राणा ने 44 गेंदों पर ताबड़तोड़ 91 रन बनाए। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह और जेवियर बार्टलेट ने एक एक विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने मजबूत शुरुआत दिलाते हुए 126 रन की साझेदारी की। प्रियांश ने 43, वहीं प्रभसिमरन ने 76 रन का योगदान दिया। बीच के ओवरों में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 71 रन की तेज पारी खेली और अपनी टीम को 7 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से जीत दिला दी। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 2 विकेट लिए। केएल राहुल को उनके शानदार प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही केएल राहुल आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाली सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो जिस तरह से अभी हमने रिपोर्ट सुना तो आज कई तरह के रिकॉर्ड बने हैं, किसी ने खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं और अभी आज और भी रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। तो अगर हम देखें, दोनों मैचेस को देखें, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पहला मैच था दिल्ली में तो वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच का नजर आ रहा है, और आज का अभी जो राजस्थान रॉयल्स और इसके बीच का मुकाबला है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच खेला जा रहा है।
और केएल की आपने बात की, जिस तरह से उन्होंने 150 का आंकड़ा पार किया, पहले भारतीय बने आईपीएल में ऐसा करने वाले। हालांकि उस तरह का मिजाज है नहीं, उस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का, थोड़े से धीमे खेलते हैं और ओडीआई फॉर्मेट के विशेषज्ञ बल्लेबाज माने जाते हैं, और टेस्ट की भी बात कर लें। लेकिन जिस तरह का आज उन्होंने एग्रेशन दिखाया है तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि उनकी इतनी खूबसूरत और शानदार और आक्रामक पारी के बावजूद उनकी टीम इस मैच को जीत नहीं सकी। क्योंकि दूसरी तरफ भी वैसे ही धुआंधार लोग थे, बहुत मुश्किल होता है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है पंजाब किंग्स ने, ये 262 आप याद कीजिए 2024 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स केकेआर के विरुद्ध जो 262 रन का रन चेस किया था इसी टीम ने, और उसको ही सुधारा है समझिए। और भी ऑल फॉर्म T20 में जितने भी मुकाबले होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अब तक का ये सबसे बड़ा रन चेस है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो 2024 में 262 वाला रन चेस किया था उसमें भी आज के दो प्रमुख खिलाड़ी आप कह सकते हैं, प्रभसिमरन सिंह, उन्होंने भी 54 रन बनाए थे, अर्धशतकीय पारी खेली थी। शशांक का भी योगदान रहा था, अलबत्ता वहां पर ब्रेस्टो के का शतक वहां पर लगा था जरूर। लेकिन ये जिस निरंतरता के साथ पंजाब की टीम के जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई रोक पाएगा। पहले स्थान पर है, अपराजय है, एक मुकाबला बारिश से धुला जरूर था जो अंक का बंटवारा करना पड़ा था, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो टीम जिस तरह से पंजाब की टीम खेल रही है, लाजवाब।
जी, अभी आपने कहा कि केएल राहुल के इतने बेहतर प्रदर्शन के बाद भी टीम जीत नहीं पाई, तो हम कह सकते हैं कि पूरी टीम का एक साथ प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है टीम में। और उसी तरह अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनके पास वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जैसे यशस्वी टीम मेंबर्स हैं, बट उनके पास एडिशनल विनिंग फैक्टर क्या होना चाहिए इनके, इन दो खिलाड़ियों के अलावा, अगर हम चैंपियनशिप जीतने की बात करें तो?
देखिए, आपको हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर आप बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं तो गेंदबाजी भी अच्छी होगी, फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। करुण नायर ने दो कैच श्रेयस अय्यर के छोड़े हैं, आपने देखा होगा। तो अगर आप कैच छोड़ते हैं तो फिर मैच कैसे जीत सकते हैं? अगर वो कैच पकड़ जाते हैं, मुझे याद आ रहा है कि शायद 25 और 28 पर उनके दो कैच ड्रॉप हुए थे, तो श्रेयस अय्यर अगर उस समय आउट हो जाते सवेरे, तो फिर तो सब कुछ बदल जाता, परिस्थिति बदल जाती। तो आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने 250 रन 260 रन बना लिए और उसके बाद आपकी गेंदबाजी कमजोर है तो आप उससे मैच नहीं जीत सकते, आपको फील्डिंग भी वैसी करनी पड़ेगी और गेंदबाजी भी।
बिल्कुल, और हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो बता दें कि महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। हालांकि श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 3-0 से आगे है, महिलाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, इस लिहाज से यह कितना दुखदाई है।
बिल्कुल सही कहा आपने, जब T20 की आपने याद दिलाई, और जैसे ODI फॉर्मेट में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी महिला टीम, लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 3 हार कंसीड की है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में ये अभ्यास है एक तरह से विश्व कप का, उसमें अगर इस तरह से आप जाते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि विश्व कप के लिए जब टीम चुनी जाएगी तो आपको बहुत कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा।
अब थोड़ी जानकारी फुटबॉल की। ISL फुटबॉल लीग में जमशेदपुर FC और चेन्नई FC के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक जमशेदपुर ने 2-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेला गया एक अन्य मुकाबला बेंगलुरु और मुंबई के बीच ड्रॉ रहा। जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है जहां ऋत्विक गुप्ता ने 87वीं अंडर 17 अंतर्राज्यीय जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा है। ऋत्विक टेबल टेनिस महासंघ के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अधिकारियों ने उनके श्रेय का सफलता उनके मेहनत को दिया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र में लगातार सरकार रिफॉर्म कर रही है, जिस तरह से खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रही, उसका कितना रोल है?
देखिए, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, वहां पर जैसे अन्य राज्य में खेल संघ होते हैं, राज्य खेल संघ, तो वहां जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है और राज्य सरकार के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आपने देखा, पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता। उसके बाद जो इंडियन फुटबॉल लीग, जो आई लीग के नाम से जानी जाती है, उसमें भी कश्मीर की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है उनके खिलाड़ी। तो कुल मिलाकर आपने बिल्कुल सही कहा कि क्षेत्र में खेल का विकास बहुत ही सकारात्मक तरीके से हो रहा है और ये इस बात की गवाही है कि वहां सब कुछ अच्छे तरीके से, सामान्य तरीके से चल रहा है। क्योंकि जब स्थिति असामान्य होती है तो फिर खेलकूद के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते या पर्यटन के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं सकते। तो स्थिति सामान्य है तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से वहां पर चल रहा है, जिसमें खेल का क्षेत्र भी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं वहां पर राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने खिलाड़ियों के लिए योजनाएं बनाए रही हैं। आने वाले समय में वर्ष 2027 खास करके हम देखेंगे और भी कई नाम उभर कर सामने आएंगे इस राज्य से।
जी, अब चलते चलते कुछ और जानकारी आपको दिए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ में शामिल हो गया है और इस निर्णय से अब अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ की सदस्यता बढ़कर 40 महासंघ हो गई है और विश्व खेल आंदोलन के शामिल खेलों का दायरा बढ़ गया है। वहीं पैराशूटिंग खेल का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के हाथों में होगा। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद आपका।
श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।